ఇరాయే నిత్యం మహేశం రజత గిరి నిభం చారు చంద్రావతంసం రత్నకల్పోజ్వలాంగం పరశు మృగపరా భీతిహస్తం ప్రసన్నం పద్మాసీనం సమంతాత్ స్తుతమమరగణర్ వ్యాఘ్రకృత్తిం వసానం విశ్వాద్యం విశ్వవంద్యం నిఖిలభయహరం పంచవక్త్రం త్రినేత్రం నారాయణం పద్మభవం వశిష్ఠం శక్తిం చ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుకం గౌడపదం మహంతం గోవింద యోగీంద్రమథ శిష్యం శ్రీ శంకరాచార్యమథ పద్మ పాదం చ హస్తమలకం చ శిష్యం తంత్రోటకం వార్తికకారమన్యాన్ అస్మద్ గురుం సంతతమానతోస్మి విశుద్ధ జ్ఞానదేహాయ త్రివేది దివ్యచక్షుషే శ్రేయ ప్రాప్తి నిమిత్తాయ నమః సోమార్థధారిణే ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ పాహి మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ పాహి మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ రక్ష మాం రామ రాఘవ రామ రాఘవ రామ రాఘవ రక్ష మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ పాహి మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ పాహి మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ రక్ష మాం కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ కృష్ణ కేశవ రక్ష మాం చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర महिमा चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर 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 रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां चंद्रशेखर रक्ष मां। ओम ओम प्रेमपुरी आश्रम आयोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी स्तोत्र के आधार पर विचार चल रहा है। अभ्यास के लिए 79 श्लोक। नित्यं योगी मना सरोज दलसन चारक्षमस्त्वत्क्रम शंभोत्तेन कथं कठोरयमराट वक्ष कटा कवाट क्षति अत्यंतं मृदुलं त्वदंग्रियुगलं आमे मन चिंतयत् एतत् लोचन गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये। यस्यत्येष जनिम् मनुस्य कठिनम् तस्मिन्नता नीतिमत् रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपद न्यासपुराभ्यसितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस् तल्पेषु विद्यादिषु प्राय सत्सुशिलातलेषु नटनम् शम्भो किमर्थं तव कञ्चित् कालं मा महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चित् ध्यान समाधिमिच्च नतिभिः कञ्चित् कथा कर्णनैः कञ्चित् कञ्चिद्दवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशिम् यप्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमना जीवन् स मुक्तः खलु बाणत्वं वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यत्वमार्यापते भोणित्वं सखिता मृदङ्गभवता चित्यादिरूपं ददौ त्वत्पादे नयनार्पणम् च कृतवान्। त्वद्देह भागो हरिः पूज्या त्वत्पूज्यतर स एव हि न चेत्। को वा तदन्योधितकः। शिव भक्ति से युक्त स्तोत्र है। शंकराचार्य जी भगवान शिव प्रति कैसा भाव रखते हैं और कैसा भाव व्यक्त करते हैं। इस श्लोक में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने शिव के बारे में दो संबोधन किया है। पहला संबोधन है शंभो, हे शंभो। संबोधन करने के बाद कुछ कहो तो वो व्यक्ति सुनता है, और बिना संबोधन किए कुछ कहोगे तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बात सुन ले। हो सकता है जिस समय तुम अपनी बात कह रहे हो उस समय वह व्यक्ति अन्य मनस्क हो, तो फिर तुम्हारी बात सुनेगा कैसे। संबोधन का अर्थ है अभिमुखीकरण, संबोधनम। संबोधनम का अर्थ होता है अभिमुखीकरण, यानी उसका मुख अपने तरफ करना, घुमाना, ये संबोधन है। तुम अभी मेरे तरफ देख रहे हो, कोई पीछे वाला व्यक्ति हे वसंत भाई करके बुलाएगा तो वसंत भाई तुरंत मुड़ेंगे, पीछे मुड़ जाएंगे। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, ये अचानक मुझे किसने बुलाया और क्यों बुलाया, ये स्वाभाविक ही है। मोहनी सभी मेरे तरफ देख रहा है, मेरी बात को सुनने के लिए ध्यान लगाकर, कान लगाकर, एक टक देखते हुए बैठा है। अचानक पीछे से कोई बुलावे, हे मोहनीश भाई, फट मुड़े के देख ले जाओ, किसने बुलाया, क्यों बुलाया। कान का काम है सुनना, उसने बुलाया, कान ने सुन लिया, मुंह क्यों मोड़ना था, क्या जरूरत थी मुंह मोड़ने की। तो संबोधन में ये ताकत है कि उसके मुख को अपने मुख के तरफ घुमा देता है, समझे कि नहीं। इसलिए संबोधन का अर्थ किया अभिमुखीकरण। अभिमुखीकरण का अर्थ होता है अपने तरफ उसके मुख को करना। तो शंकराचार्य जी ने भगवान शिव के बारे में एक नाम लेकर संबोधन किया। क्या कहकर संबोधन किया, शंभो, जिसकी सत्ता किसी अन्य निमित्त के बिना स्वयं सिद्ध हो उसको कहते हैं शंभो। जिसकी सत्ता किसी अन्य साधन या अन्य कोई निमित्त के बिना सिद्ध हो उसको शंभो कहते हैं। शंभो की व्युत्पत्ति है स्वयमेव भवती इति शंभो। और को होने के लिए कोई और की आवश्यकता पड़ती है। पंचदशी सुन रहे हो आजकल सुबह के प्रवचन में, वेदांत के अनुसार ईश्वर को सिद्ध होने के लिए भी माया की आवश्यकता पड़ी। पर साधन सापेक्ष जिसकी सत्ता हो उसको शंभो नहीं कह मैं। माया की अपेक्षा से ईश्वर शंभो नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं सिद्ध नहीं है। ईश्वर की सत्ता स्वयं सिद्ध नहीं है। तुम लोग वेदांती हो इसलिए मैं वेदांत की बात कह देता हूं भाई। ईश्वर की सत्ता स्वयं सिद्ध सत्ता नहीं है, समझ में तो आई ना बात। माया के चलते ईश्वर सिद्ध हुआ है। माया बिंबो वजीकृत्य ताम साथ सर्वज्ञ ईश्वरा, माया में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा, माया उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम ईश्वर पड़ा। तो ईश्वर स्वयंभू कैसे हो गया भाई? ईश्वर की सत्ता स्वयं कहां से सिद्ध हुई? इसलिए ईश्वर को संभो करके संबोधन नहीं किया जा पाएगा। अविद्यावशकस्तु अन्य तद्वैचित्र्याद अनेकदा। प्रज्ञ की सत्ता भी स्वयंभू नहीं है। अविद्या के संबंध से प्रज्ञ की सत्ता सिद्ध है, इसीलिए प्रज्ञ स्वयंभू नहीं है। जो स्वयंभू नहीं है तो शंभू कहां से होगा? अब तेजस की सत्ता भी शंभू है नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है। वृष्टि सूक्ष्म के कारण सूक्ष्म कार्यों की अपेक्षा से तेजस है तो शंभू नहीं है। हिरण्यगर्भ की सत्ता भी स्वयं सिद्ध नहीं है, समष्टि सूक्ष्मों के चलते हिरण्यगर्भ की सिद्धि है। और विश्व की सिद्धि भी वृष्टि स्थूल के कारण विश्व की सिद्धि है, और वैश्वानर की सिद्धि समष्टि स्थूल के कारण है। है तो ये जो चार चैतन्य हैं इनको शंभो संबोधन नहीं हो सकता है। तो शंभो किसको कहेंगे? तो ब्रह्म को ही शंभो कहना पड़ेगा ये, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है। उसकी सिद्धि, उसके सत्ता, उसका अस्तित्व किसी उपाधि के चलते नहीं है। तो शंभो शब्द के शंभो शब्द का अर्थ समझ में आया ना आप? तो एक प्रकार से वह शुद्ध ब्रह्म के बारे में शंभो, लेकिन कहते हैं फिर संबोधन तो किया संभो। शिवजी को लगा ये मेरे बारे में कौन मुझे पहचानता है और मेरा ये संभो नाम लिया? मेरे असलियत को पहचाने बिना कोई संभो नाम ले पाएगा? मैं स्वयं सत्ता वाला हूं, स्वयं सिद्ध हूं, ये तो कोई जानने वाला ही संबोधन करेगा। नित्यम योगी मन सरोज दल संचार क्रमोपाद विक्षेपे त्वत्क्रम। आपके चरण, हे शंभो आपके चरण। संबोधन किया निरुपाधिक नाम लेकर, और विश्लेषण कर रहे हैं स्वपाधि का। ब्रह्म का तो कोई चरण है ही नहीं, चरण तो माया उपाधि वाले का ही होगा। त्वत्क्रम माने आपके चरण। कहां विचरण करते हैं? नित्यम योगी मन सरोच दल संचार क्षमा। योगियों के जो मन कमल है, मन सरोज, योगियों के मन रूपी पुष्प, मन रूपी कमल में ही आपके चरण का संचार यानी आपके पांव के द्वारा आपका गमन संभव है। संचारक्षम त्वत्क्रम योगी मन सरोज दल संचारक्षम। नित्य, उनके मन रूपी हृदय रूपी कमल में तो आपका चरण नित्य विचरण करता है, पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रधान चार शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है पद्मपादाचार्य, सुना है ना? चार शिष्यों में से एक शिष्य का नाम क्या है? पद्मपादाचार्य। वो नित्य निरंतर गुरु जी की सेवा करते थे। कई प्रकार के सेवा हैं तो उनमें से उनकी सेवा ड्यूटी क्या थी? लंगोटी धोना, वस्त्र धोना, कपड़े धोना। तो एक दिन कपड़े धोने के लिए चले गए नदी के किनारे, तो कोई विशेष पर्व आदि रहा होगा, इस किनारे में बैठकर कपड़ा धुआ करते थे प्राय करके। उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहा होगा, तो उससे बचने के लिए वह नदी उस पार चले गए और उस किनारे में जाकर वहां भीड़ भाड़ तो थी नहीं, आराम से कपड़े धोने लग गए। कपड़ा धो धा के जब आने लगे तो नदी में बहुत पानी आ गया, पुल तो थे नहीं। पहले पानी कम था तो चले गए थे, अब पानी बहुत ज्यादा आ गया। अब कपड़े सब सूख जाग गए और कपड़ा गठरी बना ली, इधर आने की तैयारी किया तो नदी बड़ी हुई होने के कारण नहीं आ सके, किनारे में ही खड़े रह गए। अब इधर स्वाध्याय का समय हो चुका है, अन्य जो तीन गुरु भाई थे वो लोग तो तैयार होकर ठीक टाइम में आ गए, जैसे आप आ गए, गुरु आने से पहले आ गए ना। अब वो शिष्य आया नहीं, तीन आ गए चार तो आए नहीं। अब देखो कुल चार श्रोता है, वो उनमें से तीन आए चौथा ना आए तो वक्ता को मजा नहीं आएगा, वो चौथे की भी प्रतीक्षा करेगा ना, आने दो उसको। तो और लोगों ने कहा कि महाराज वो तो कुछ समझता नहीं है, मूर्ख है, अब कब आएगा कब आएगा, कहां गया कहां गया है, समय का ख्याल रखना चाहिए ना, तो इसलिए शुरू करिए स्वाध्याय, उसकी प्रतीक्षा मत करिए। शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं बेटा, वो नियमित सुनने वाला होने के कारण कभी आवे कभी ना आवे हमारे जैसे, तो कोई प्रतीक्षा करेगा नहीं, लेकिन जो नियमित आएगा उसकी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत समय हो गया महाराज, शुरू करिए। तो शंकराचार्य जी ने आवाज लगाई, हे तू कहां है, क्यों लेट कर रहा है, जल्दी आ, स्वाध्याय का समय हो रहा है, आ। गुरु जी का आवाज उसके कान में पड़ गया, विचार करेगा अब मैं कैसे जाऊं, नदी तो है पुल तो है ही नहीं, पानी नदी में पानी बहुत जबरदस्त है। तो विचार किया, कूद पड़ता हूं, ये छोटी सी नदी तो है, मेरे गुरु जब इतना बड़ा भवसागर से मुझे पार लगाने के लिए तैयार है तो क्या ये छोटी नदी में मुझे डूबने देगा वो है? जो इस नदी में से डूबने से बचाएगा नहीं वो फिर इतना बड़ा भयंकर भवसागर से मुझे कैसे पार करेगा, और जो भवसागर से मुझे पार लगा सकता है तो ये छोटी सी नदी में मुझे डूबने देगा, ये भाव उनके दिमाग में आ गया, उनके मन में ये भाव आ गया। यानी अपने गुरु के उस सामर्थ्य के बारे में उन्होंने विचार किया कि मेरा गुरु सक्षम है, मुझे डूबने नहीं देगा, डूबकर मरने नहीं देगा, वो बचाएगा, ये ये नदी तो कुछ नहीं है, हैं? इतने बड़े भवसागर से मुझे बचाने के तैयार है वो गुरु, तो ये नदी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। पूरा विश्वास हो गया तो कूद पड़े, और जहां उनका पहला चरण पड़ा तो चरण पड़ने से पहले वह कमल का फूल निकल आया, पट ले गया। वो फूल में ही वह अपने चरण रखे, फिर दूसरा चरण रखते हैं तो फिर वही कमल का फूल। तो पूरी नदी में वह इस तरह चलकर पार कर गए जैसे कि हम जमीन में चलते हैं। तो पानी में तो उनका चरण पड़ा ही नहीं है, तो यह तो गुरु की कृपा हुई ना, यही तो गुरु की कृपा है। और जो पानी में चरण ही नहीं पड़ा तो डूब के मरने के तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो फटाफट आ गए। अरे तू तो इतना दूर था, नदी में पानी बहुत जबरदस्त था, तू आया कैसे, पुल तो थी नहीं। बोले महाराज, कमल का फूल जो था उसी फूल के ऊपर पैर रख के मैं नदी से पार कर गया, तब आज से तेरा नाम पद्म पादाच है। आज से तेरा नाम क्या हुआ? पद्मपाद। तो भगवान शंकर का नाम क्या है? पद्मपाद। यही अर्थ निकला कि नहीं है? नित्यम योगी मनः सरोज दल संचार क्षमत त्वत्क्रम। तुम्हारे चरण नित्य निरंतर योगियों के हृदय रूपी कमल में संचरण करते हैं, करने में सक्षम है। और योगियों के हृदय में आपके चरण पड़ने पर न आपके चरण को कोई कष्ट होने वाला है, न योगियों के हृदय को कोई पीड़ा होने वाला है। समझे कि नहीं? आप हाथ फैलाकर सोए हो और आपका पति या आपकी पत्नी रात को अंधकार में उठकर बाथरूम जाने की तैयारी की बत्ती जलाए बिना, और संयोग से आपके हाथ में उसका चरण पड़ गया, वो पांव रख गई या रख गया, तो आपका निद्रा, आपकी निद्रा भंग होगी कि नहीं? आपको पीड़ा होगी कि नहीं? बोलो। आपके हाथ में कोई पांव रख दे, चल जाए, कुचल कर जाए, तो आपको पीड़ा नहीं होगी? हाथ में किसी का पांव पड़े तो पीड़ा हो सकती है, तो आपका तो हृदय तो कितना कोमल है, और वहां यदि किसी का चरण पड़े तो कैसे सहन करोगे भाई? और शिव का चरण कहां पड़ता है? हृदय रूपी कमल में। और हृदय रूपी पत्थर कहा होता तो चलो ठीक था, हृदय को कमल कह दिया। और वहां पांव रखता है कौन, चरण रखता है कौन? तो शिव। संभो, ये संबोधन, हे संभो। यहां दूसरा संबोधन है विभो, अंतिम लाइन में विभो ये संबोधन है। हे संभो, हे विभो, व्यापकत्वात् विभो, नित्यम योगी मन सरोज दल संचार क्षमस्त्वत् क्रम। क्रम माने चरण, त्वत्चरण त्वत्क्रम। तीन, जब आपका चरण ऐसा है, तीन फिर कथम कठोर यमराट वक्ष कवाट क्षति। ऐसे कोमल चरणों से जो नित्य योगी के हृदय के चरण कमल, हृदय कमल में विचरण करने वाले चरणों द्वारा दुनिया में सबसे कठोर से कठोर हृदय वाला यमराज की जो छाती है, उस छाती में जब आपने प्रहार करके उसके छाती को फोड़ डाला, कैसे संभव हुआ भाई? ये तो ठीक उसी तरह हुआ, अभी अभी मथकर निकाले हुए मक्खन के गोले से पत्नी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके खोपड़ी को फोड़ डाला, मारा उसके खोपड़ी में, क्या मारा? अभी अभी मत के, वो बर्फ में जमाया हुआ नहीं, वो फ्रिज में रखा हुआ तो थोड़ा कठोर होगा, अभी अभी मत के निकाला था मक्खन का गोला, और हाथ में गोला था उसी समय में पत्नी से झगड़ा हो गया, मारा उठा के उसके खोपड़ी में, और उस गोले से खोपड़ी फूट गए। विश्वास करोगे? फूटेगा? यहां हुआ क्या? कहां तो नित्य योगी के हृदय रूपी कमल में विचरण करने वाले आपके कमल रूपी माने चरण, इतना नरम चरण, और कहां यमराज का कठोर से कठोर वक्षस्थल हृदय, और वहां आपने जो लात मारी, एक बार से दूसरी बार लात मारना नहीं पड़ा, एक ही लात से यमराज खत्म। वक्ष कपाट क्षति, तो सुना है ना आप लोगों ने, मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग सुना है कि नहीं? बहुत छोटे बालक थे मार्कंडेय ऋषि, 6 वर्ष के 7 वर्ष के बालक, और खेल में ही मस्त थे, मनोरंजन में खेल में ही मस्त थे। नारद जी वहां पहुंच गए, नारद जी ने कहा, हे मार्कंडेय, क्या चक्कर है, तुझे कुछ पता भी है दुनियादारी का? तेरी आयु केवल एक मुहूर्त की है, तो इस संसार में एक मुहूर्त तक ही अब जिएगा, उसके बाद तुझे मरना है, आयु एक मुहूर्त की है, और तू खेल रहा है, खेल में ही मस्त है। अरे भाई, जीवन को सफल करने के लिए कुछ करना चाहिए, भजन कर परमात्मा का। बोले नारद जी को कहा मार्कंडेय ऋषि ने, अभी क्या चिंता है भाई, अभी तो बहुत बच्चा हूं, बड़ी लंबी जीवन है, कर लेंगे बाद में भगवान का भजन, ये तो उम्र ही खेलने का उम्र है बेटा। नारद जी, क्या चिंता है, खेलने दो। नारद जी ने कहा कि अभी बड़ी उम्र नहीं है, अभी एक मुहूर्त बाकी है, सच कह रहा हूं, तेरा प्रारब्ध समाप्त है। अरे एक ही मुहूर्त है, फिर क्या करे? उसके बाद बोले यमराज आएगा, तेरे को उठा जाएगा, निकालेगा, ले जाएगा, तुझे मरना पड़ेगा। हाँ, किस चक्कर में पड़ा है तू? बड़ी भारी लंबी आयु, लंबा समय है, लंबी आयु ये कह रहा है, कुछ नहीं। अरे राम राम, तब तो फिर तो बहुत मुश्किल है, फिर क्या करें? बोलो, बचने का कोई उपाय? बोले और कोई उपाय नहीं है, मेरी मां है, मेरे पिता हैं, भाई बंधु हैं, कोई ना कोई तो मदद करेगा ना उस समय में। पृथ्वीपति सूर्य ने महाराष्ट्र के कवि हुए हैं पृथ्वीपति सूरी, उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवतिकोऽपि न कालगतम वशम भजत रे मनुज गिरिजापतिम। अरे मनुष्य, तो इस भरोसे में नहीं रहना कि काल वशम गतम, जिस समय यमराज के वश में जाने का समय होगा उस समय में न जनको न जननी, यमराज सामने आ जाएंगे तो तेरे बाप भी तेरे को बचाने में असमर्थ हैं। न जनका, तो किसी के भरोसे में नहीं रहना, बोले पिता नहीं बचाएगा, मां तो बचाएगी ना, बोले न जननी, मां भी उस समय नहीं बचा सकती है। भूख लगी हो तो खाना खिला सकती है, लेकिन यमराज सामने खड़े हो मां कुछ नहीं कर सकती। न चसोदरा, अपना ही बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा, भाई अपना भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। न तनय, अपना बेटा भी कुछ नहीं कर पाएगा। न च भूरि बलम, और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे तो बादाम खा के दंडवत पेल कर तगड़ा है पहलवान बनेंगे तब तो बल काम आएगा। बोले न च भूरि बलम कुलम, तुम्हारे शरीर की ताकत भी काम नहीं आएगी। आवती को पिन कालगतम बसम, फिर उस समय में कौन रक्षा करेगा, कौन मदद करेगा? तो कवि ने कहा कि एक ही व्यक्ति है उस समय में, ऐसी अवस्था में तुम्हारी रक्षा करने वाला, रक्षा करने में समर्थ एक ही व्यक्ति है। कौन है महाराज? भजत रे मनुजा गिरिजा पतिम, वह पर्वत पुत्री पार्वती उनके जो पति हैं, गिरिजापति, गिरि पर्वत, जा पर्वत से उत्पन्न हुई, गिरिजा पार्वती उनके पति शिव, वही समर्थ है, उसके अलावा और कोई समर्थ नहीं। यदि उस समय उनके शरण में गए तो वो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, और नहीं कर सकते, बस। नारद जी ने मार्कंड ऋषि को वही समझा दिया। तो मार्कंड ऋषि ने कहा कि अच्छा, उनके शरण में जाने के बाद वो रक्षा करेंगे? बोले हाँ, पक्की बात है। तो तुरंत ही खेलना छोड़कर भगवान शिव के शरण में चले गए अनन्य। तो कहते हैं कि वहां जहां खेल रहे थे उस मैदान के बगल में ही एक शिव मंदिर था। खेला छोड़कर तुरंत मंदिर के अंदर घुस गए और शुरू कर दिया प्रार्थना। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन ही। प्रार्थना करना आरंभ कर दिया, तब तक एक मुहूर्त समय निकल गया। नारद जी बाहर खड़े थे, अब देखते हैं क्या होता है। यमराज ने मार्कंडे ऋषि को कहा कि हे मार्कंडे ऋषि, तू कहां है? चल अब यहां तेरा खेल खत्म, यहां मृत्युलोक में तेरा खेल अब खत्म, चल बाहर आ। बोले कौन हो? बोले मैं मृत्यु का देवता यमराज खुद आया हूं, चल। अरे ठहरो बाहर, हम अभी पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, बाहर ठहरे रहो। यमराज ने कहा कि आज तक कोई किसी बहाने से नहीं बचा है। टेबल में खाना खाने बैठा हुआ और यमराज आए, वो बताओ मैं ये थाली का भोजन खा पूरा करूं तब ले जाना, रुका है भोजन पूरा करने तक और तुम टॉयलेट में बैठे हो और यमराज आ गया, चल खड़े रहो हम पूरा फ्रेश हो जाए ना धोए तब ले जाना, रुका है वो, कोई बहाना नहीं है, वो आ गया तो आ गया, बोले जल्दी चल, बोले हम नहीं जाएंगे बस तुम जाओ वापस, बोले हम आए और तू ऐसा कहे तेरी क्या हिम्मत है, कहते यमराज खुद मंदिर के अंदर घुस गए। महाभारत की कथा है, पुराण की कथा है, महाभारत की कथा है। अब यमराज ने अंकुश और पास दोनों निकाली और अंकुश से स्थूल शरीर के अंदर का अंगुष्ठ परिमाण का सूक्ष्म शरीर को और पास से निकालना शुरू किया, पास फेंक दिया निकालने के लिए। जैसे यमराज ने पास फेंकी, अंकुश का प्रहार किया, मार्कंडेय ऋषि ने वो जो शिवलिंग था उसको पकड़ लिया, शिवा त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् मृत्योर्मुक्षीय। इस यमराज से मेरे मुक्ति करो, ये जबरदस्ती कर रहा है, मैं जाना नहीं चाहता हूं, आपके आराधना में लगा हूं और ये जबरदस्ती मुझे ले जाना चाहता है, रक्षा करो रक्षा करो। तब उसी शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। अच्छा ये जबरदस्ती करता है, तू मेरे शरण में आया और ये जबरदस्ती करे। एक लात उस यमराज के छाती में प्रहार किया, उसी पर शंकराचार्य जी ने संकेत कर दिया, मारा एक लात तो यमराज मर गया। बक्ष कपाट क्षति, देख लो कठोर यमराट बक्ष, यमराज का हृदय कोमल हो सकता है, है? हो सकता है यमराज का हृदय कोमल? 2013 में केदारनाथ में अतिवृष्टि के चलते खंड प्रलय हो गया, तो बूढ़े बूढ़े को भगा दूं बच्चों को छोड़ दूं ऐसा कहा यमराज ने, है? कहा। अभी अभी नेपाल में भूकंप चला, बड़ा भयंकर तबाह हो गए, बूढ़े बूढ़ों को तो खत्म कर दूं, छोटे बच्चों को छोड़ दूं, महिलाओं को छोड़ दूं, ऐसा कहा है क्या? उसके हृदय में दया तो है ही नहीं, दया हो सकती है यमराज के हृदय में? कठोरता, ये शंभो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है, कहां आपका चरण नित्य योगी हृदय कमल में, हृदय रूपी कमल में संचरण करने वाला चरण, और कहां वो यमराज का कठोर हृदय में अपने एक प्रहार किया और एक ही प्रहार से यमराज मर गया, ये कैसे संभव हुआ? महाराज मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको कितना पीड़ा होगी, आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। अत्यंतम मृदुलम तवांग्री युगलम, हाय हा हाय है, खेद दुख की बात है। अत्यंतम मृदुलम तवांग्री चरणम, तुम्हारे चरण कमल इतने कोमल है, अत्यंत मृदुलम, मे मनश्चिंतयति, मुझे तो उस दिन से आज तक, शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुझे तो उस दिन से आज तक, किस दिन से हैं? यमराज के हृदय में जब आपने लात प्रहार की उस दिन से आज तक मनश्चिंता, यही मुझे तो यही चिंता सता रही है आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा हैं? हाँ, मैं मनश्चिंतयति, मुझे तो रात दिन वही चिंता लगती है कि शिवा के चरण में कितना दुख होगा। भावना बड़ा विचित्र होता है भाई। अभी एक डेढ़ महीना से ये क्या बोलते हैं इसको हैं? फ्रोजन शोल्डर, इस शोल्डर को फ्रोजन हो गया है ना, जाम हो गए नस मसल्स, कहीं जाम हो गए होंगे है ना। अब उसके चलते हाथ मूव करने में चलाने में कहीं ना कहीं तो खिंचा हुआ आता है। तो हमने यहां आने के बाद मुख से ये शब्द निकल क्या गया, जो आता है इसके इलाज की ही चिंता करता है। कोई बिजली का वाइब्रेटर लेके आ रहा है, कोई मैग्नेट का वो रोलर लेके आ रहा है, कोई गर्म पानी के थैली लेके आ रहा है, हैं? कोई तेल लेके आ रहा है, कोई ऑयल लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है। हे भगवान, जब से आया जिसको पता चला वो कुछ न कुछ उपचार के लिए प्रयत्न कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कराने के लिए आ रहा है, कोई कुछ कराने के लिए आता है। हे, एक चेला है सुबह कथा करके कमरे में आया नहीं कि गुरी उठिए एक्सरसाइज करिए, दिन में चाय पिया नहीं कि एक्सरसाइज करिए। अब कमरे में पहुंचोगे तो वो फिर कहेगा स्वामी जी एक्सरसाइज करिए। कितनी चिंता है देखो भक्तों को, मुझे उतनी चिंता नहीं, इनको चिंता है, है कि नहीं बोलो? भावना ना है, भावना ना है। इस शोल्डर के फ्रोजन से मुझे इतनी चिंता नहीं है, और दूसरे लोग बहुत चिंतित हो गए। स्वामी जी को कितना कष्ट हुआ होगा, कैसे ठीक करें, तेल लगाकर ठीक करें कि एक्सरसाइज करके ठीक करें कि वाइब्रेटर करके ठीक करें कि हैं? हे भगवान, तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज कि भक्तों का तो यह हाल है, तो मेरा क्या हाल होगा, तो मैं क्यों नहीं चिंता करूं बोलो? उस दिन से मैं आज तक यही चिंता कर रहा हूं कि आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी। हाँ, अत्यंतम मृदुलम तदंग्री युगलम, तत् माने आपके चरण कमल अति कोमल हैं और यमराज का वक्षस्थल अति कठोर है। ऐसे कठोर हृदय में आपने इतनी कोमल चरण से प्रहार किया तो आपके चरण में कितनी पीड़ा हुई होगी महाराज। ये तत् लोचन गोचरम कुरु विभो, हे विभो मुझे एक बार जिस चरण से यमराज का वक्षस्थल प्रताड़न करके फोड़ा था, नष्ट कर दिया था, मुझे एक बार दिखाइए तो सही, क्या कितना घाव हुआ है, स्वेलिंग हुआ है कि नहीं, सूजन आया है कि नहीं,
लेकिन तब से फिर मैंने आज तक आपके वो चरण देख नहीं पा रहा हूं। एक बार दिखा दीजिए, मैं एक्यूप्रेशर जानता हूं। शंकराचार्य जी कह रहे हो मेरे पास उसके उपाय है, ट्रीटमेंट है, हैं? ए भी वो एक बार दिखाइए तो सही। एतद लोचन गोचरम कुरु, मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं आपके चरण में यदि सूजन आया हो, फ्रैक्चर हुआ हो, क्रैक हुआ हो, कुछ घाव हो गया हो, कुछ छिलछाल गया हो, तो हस्तेन संबाहे, हस्तेन संबाहे, मैं अपने हाथ से आपके उस चरण की मालिश करना चाहता हूं। कौन कह रहा है ये बात? किसके चरण की? बोलो, क्या भाव है, क्या भाव है? और मैं मालिश करूंगा तो आपके जो चरण में यमराज के छाती में प्रहार करके जो आपको पीड़ा हुई है, बड़ा आनंद आएगा महाराज। मैं ज्यादा दबाऊंगा नहीं, है? मैं कुछ दो चार पॉइंट जानता हूं, एकदम भी कर दूंगा। एक बार दिखाइए तो सही। हस्तेन संबाहे, और दूसरी बात है, मेरे हाथ छोटे हो सकते हैं, आपके चरण बड़े हो सकते हैं, कुछ नहीं तो शायद हाँ वो था ना बाणासुर, जिसके सिर्फ दो हाथ थे और शिवजी की तपस्या करके, शिवजी को प्रसन्न करके शिवजी से ये वरदान मांगा कि महाराज मुझे 1000 हाथ दे दो, ये दो हाथ आपकी सेवा में कम पड़ रहे हैं। मान लो शंकराचार्य जी ये कह रहे हो कि मेरे हाथ कम हो तो मेरा चेला बाणासुर है, उसको भी बुला लूंगा महाराज, एक बार चरण दिखाइए तो सही, और क्या है, दिखाइए तो सही। ये भक्ति का भाव है महाराज, है? शिव जी के चरण को आप क्या दबाओगे? पाताल जिसके पांव हैं, ब्रह्मलोक जिसके सिर है, ऐसे विराट पुरुष का आपके क्षुद्र हाथ क्या सेवा करेंगे? फिर भी आपकी भावना तो है ना, फिर भी आपकी भावना है, आपका छोटा पोता नाती, जिस समय आप कहो कि मेरा तो आज कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और उस समय उसने देखा कि कभी कभी जब दर्द होता था तो उसकी मां आयोडेक्स लाकर उसके बाप के कमर में मलती थी, उसने देखा था, और उस दिन उसकी मां घर में नहीं है, तो आपका पोता क्या कहता है पता है? दादा मैं मालिश कर देता हूं। तो क्या उसके हाथों की मालिश से आपका कमर का दर्द जाएगा? मानो कि उस पोते का ये कहना आपके लिए प्रसन्नता का कारण बन जाएगा, दर्द जाए चाहे न जाए। क्या भावना है, इतना छोटा है लेकिन भावना कितनी विशाल है, मेरे कितनी हित की चिंतन करता है ये। आपकी प्रसन्नता का कारण बनेगा कि नहीं? और आप नहीं करोगे तो भी जबरदस्ती वो आके मालिश करेगा, तो शाम को जब पत्नी आएगी तुम्हारी, बेटा आएगा तुम्हारा, कहोगे आज इसने मेरी मालिश कर दी है, तब कमर में तेल लगा के मूव लगा के उसकी प्रशंसा करोगे कि नहीं, ये तो भावना के साथ संबंध है। भक्ति भाव है महाराज, क्या सुंदर भाव है। नित्यम योगी मन सरोज दल सन चारक्षम त्वत्क्रम संभोतेन कथम कठोर यमराट वक्ष कटाक्ष क्षति कवाट क्षति अत्यंतम मृदुलम त्वदंग्री युगलम हा मे मन चिंतयत ते तत् लोचन गोचरम कुरु विभो। एक बार दिखा तो दो। हस्तेन संबाहये मैं अपने ही हाथ से मालिश करूंगा आपके चरणों की, और शायद मेरे मालिश करने से आपके चरण की जो पीड़ा है, यमराज के छाती में प्रहार करते समय जो दर्द हुआ है, अवश्य जाएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। हा? ये श्लोक भी लगभग उसी तरह का है, ये दूसरा श्लोक भी 80वां नंबर का। यस्य तेस जनिम मनोस्य कठिनम तस्मिन् नटा नीतिमत् द्रक्ष्यायै गिरिसीम्नि कोमलपद न्यास पुराभ्यासितः। भगवान शिव कैलाश की चोटी में अपने पांव से चल के जाते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो क्यों आप जबरदस्ती पहाड़ की चढ़ाई करते हो महाराज, कोमल पद न्यास और इतनी कोमल आपके चरण हैं और पहाड़ की चोटी पर कठोर पत्थर हैं, वहां चट्टान के चट्टान है, न आपके चरण में जूते हैं न चप्पल है, और नंगे पांव क्योंकि दिगंबर हो, बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाएगा तो पहाड़ की चढ़ाई करते समय जूता पहनेगा क्या, बोलो जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगा रहा दिगंबर है वो क्या पहाड़ की चोटी में चढ़ते समय जूता पहन के चढ़ेगा, नंगे दिगंबर है वो। कहां वो पहाड़ के चट्टाने, वो पत्थर कठोर, कहां आपके चरण बहुत कोमल, फिर भी आप उन्हीं पत्थरों में नित्य निरंतर विचरण करते हो। मुझे तो लगता है आपने ये सोच रखी है, मेरे जन्म से पहले आपने ये सोच रखी है कि ये संसार में जन्मेगा, पैदा होगा, जन्म लेगा, और इसका हृदय नरम तो होगा नहीं, कठोर होगा। जीवों का हृदय तो कठोर होता ही है ना, मेरे कहां कोमल चरण और कहां इसके कठोर हृदय, और कदाचित इसने मुझे बुला ली, पुकार लिया, ये कठोर हृदय वाला ने संसार में, मुझे तुरंत उसके हृदय में जाना पड़ेगा। और कहां मेरा चरण कोमल, कहां उसका हृदय कठोर, जब बाद में उसके कठोर हृदय में मुझे चलना है तो क्यों ना अभी से रिहर्सल करूं। ये सच बात कह रहा हूं मैं, भगवान ने ये सोचकर बाद में इसके कठोर हृदय में मुझे चलना है, अभी से कठोर पत्थर में चल के कठोर हृदय में चलने का अभ्यास करूं करके आपने वो अभ्यास किया है, समझे कि नहीं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं ना, जो निश्चय करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, मैं यही प्रेमपुरी आश्रम में ही कथा कर रहा था तो हमारे डॉक्टर अतुल भाई मजुमदार, उन्होंने निश्चय किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है, तो फॉर्म भर लिया। बहुत पहले की बात है, फॉर्म भर लिए तो दिल्ली से स्वीकृत हो गए, सिलेक्ट हो गए, वो जाने के लिए चिट्ठी आ गई कि फलाने ग्रुप में, नंबर के ग्रुप में आपको जाना है, आप तैयार होइए। चिट्ठी प्राप्त होने के बाद से डॉक्टर मजुमदार जी सुबह घर से वो जो स्पोर्ट शूज पहनकर सुबह से घर से पैदल चल के श्री रोड से वहां हैंगिंग गार्डन घूम के फिर दौड़ के आते थे, फिर जाते थे, तो आके मुझे कहते थे, स्वामी जी अब कैलाश मानसरोवर जाना मेरा पक्का हो गया, मैं इस पहाड़ की चढ़ाई करने का अभ्यास कर रहा हूं, इसे अभ्यास कर रहे हैं। और ताकि पहले से अभ्यास करोगे तब ना वो कैलाश की जो परिक्रमा आसान से हो पाएगी। ये केवल मजुमदार की कथा नहीं है, हर कैलाश की यात्रा करने वाले इस प्रकार से पहले अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। ये बात शंकराचार्य जी या शिव जी से कह रहे हैं, नहीं तो तुमको क्या पड़ी है कि वो कैलाश की चोटी के इतने कठोर चट्टानों में नंगे पांव घूमने का क्या जरूरत है? कहां आपके कोमल चरण, कहां इन पहाड़ों की कठोर चट्टाने, और वहां आप क्यों विचरण कर रहे हैं? मुझे तो लगता है मोहनीश पैदा होगा, उसका हृदय कठोर है, और जिस दिन वह बुलाएगा मुझे उसके हृदय में पहुंचना है। अब अभी से पहाड़ में चढ़कर कठोर में चलने का अभ्यास करूंगा तभी उसके हृदय में चल पाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं चल पाऊंगा। तो ये जरूर आपने अभ्यास ही किया है, अन्यथा तो पहाड़ के चोटियों में नंगे पांव कोमल हृदय वाला व्यक्ति चलने का कोई तुक नहीं है। श्लोक का वो भाव है, ऐसा यस्यति जनिम, ऐसा माने ये जीवात्मा, येति जनिम येति, पैदा होकर आएगा इस संसार में, और यहां आने के बाद इसका मन कैसा होगा? मनोस्य कठिनम, जरूर कठिन होगा, इसका मन कठोर होगा। और तस्मिन अटानीति, उसके मन में मुझे चलना पड़ेगा। मद्रक्षा ये, और मेरे हृदय में आए बिना आप मेरी रक्षा कर भी नहीं पाओगे। जब वो मृत्युंजय महादेव त्राहिमं शरणागतम कहेगा तो उसकी रक्षा के लिए मुझे उसके हृदय में पहुंचना पड़ेगा। मद्रक्षा यही गिरिसीमनी, पहाड़ के चोटी, गिरी माने पहाड़, सीमनी माने चोटी, गिरिसीमनी कोमल पद न्यास पुराभ्यासिता, आपने पहले से ही उस चढ़ने का अभ्यास कर रखा है। नोचित, यदि यह प्रयोजन न होता, दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु विद्यादिषु, अन्यथा आपके लिए क्या कमी थी, किसी बढ़िया घर बनाकर उस घर के अंदर बढ़िया एक तख्त लगाकर, मंच बनाकर, उन मंचों के ऊपर बढ़िया बढ़िया गुलाब के और कमल के फूल बिछाकर, उस फूल के ऊपर चढ़कर आप नृत्य करते तो हर्जा क्या था? क्या आपको संभव नहीं था वो करना? कमल के फूलों की कमी होती शिव जी को? वो चाहते मेरा कोमल चरण है, तांडव नृत्य करना मुझे जरूरी है, ये कठोर पत्थर में मैं क्यों करूं? एक बढ़िया स्टेज बनाऊं, बढ़िया बढ़िया फूल लाकर उसमें बिछाऊं, पुष्पेशु तल्पेशु, फूलों के चादर बनाकर फूल बिछाऊं और फूल के ऊपर मैं नाचने करके अभ्यास करूं, ये तो आप कर ही सकते थे। फिर वो पहाड़ों में क्यों चढ़ना पड़ा, वहां जाकर क्यों नाचना पड़ा? जरूर यही सोचकर कि ये पैदा होगा, इसके हृदय में फूल कहां मिलेंगे, और इसका हृदय कठोर है और उस हृदय में मुझे विचरण करना है। पहले से ही इसी कठोर पहाड़ में चढ़ के अपने पांव को उसी प्रकार का बनाओ ताकि उसके हृदय में विचरण करना कोई कष्ट न हो। नोचेत दिव्य गृहांतरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्राय सत्सु शिला तलेषु नटनम शंभो किमर्थम तव। अन्यथा ये शिला तलेषु नटनम किमर्थम, क्या प्रयोजन था? तांडव नृत्य करना था तो घर में ही बढ़िया स्टेज बनाकर बढ़िया डल्लभ का गद्दा लगा के वही अभ्यास करते, नंगे पांव से पहाड़ों में नाचने की क्या जरूरत थी? बड़ा सुंदर भाव है, और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे भाई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।